Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Akhilanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
आप लोगों की कोई ना कोई जन्म तारीख तो होगी ही, मृत्यु तारीख मैं नहीं पूछ रहा हूं, जन्म तारीख पूछ रहा हूं। जन्म तिथि आप लोगों की होगी, आपको किसने बताया कि यह आपकी जन्म तिथि है? मेरी मां ने बताया। इसका अर्थ यह हुआ कि मां ने बताया तो मां के ऊपर श्रद्धा है। नहीं स्वामी जी, मां ने तो कहा था, फिर भी मैं करेक्ट है कि नहीं वो देखने के लिए जिसमें मेरी डिलीवरी हुई थी वो हॉस्पिटल में गया और वो बुड्ढी नर्स थी उसको मैंने पकड़ा, उसने रजिस्टर में देख के बताया हां आपका यह मां बाप का नाम है और वहां बेटा हुआ था तो ये उसका जन्म तारीख है, जन्म का समय है। हाँ, इसका अर्थ ये हुआ कि आपको वो रजिस्टर के ऊपर भी श्रद्धा रखनी पड़ेगी, वो बुड्ढी नर्स के ऊपर भी आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी। कई चीजें ऐसी है कि जिसमें श्रद्धा के बगैर हम काम नहीं कर सकते। सुबह उठे चाय पीने के लिए आपको श्रद्धा है कि माचिस जलाऊंगा तो गैस प्रकट होगी, वह श्रद्धा है। ऐसा नहीं कैसे होगा तो चाय नहीं पी सकोगे आप, प्रकटाना पड़ेगा और श्रद्धा होगी कि अग्नि प्रकट होगी ही। कई चीज ऐसी होती है जिसमें श्रद्धा आवश्यक है, इसलिए भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके हृदय में श्रद्धा है वह ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इसलिए इस विषय में श्रद्धा आवश्यक है। तर्क ही करते जाएंगे, तर्क की तो कोई सीमा नहीं है, इसलिए यहां कहा कि यह आत्मतत्व अतर्क्यम है, उसके लिए कोई तर्क नहीं किया जा सकता। इतना कहने के बाद यमराज जी और आगे स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि क्या तर्क और श्रद्धा दोनों जीवन में होने चाहिए या सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए, उस विषय का स्पष्टीकरण करते हुए द्वितीय वल्ली में नौवे मंत्र में कहते हैं नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञा न्यायपृष्ठ यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि त्वादृङ्भूयान् नचिकेतः प्रश्न। वह कहते हैं हे नचिकेता, कि आपने ये मुझे जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न के उत्तर में जिस श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा जो तर्क से भिन्न है, ऐसे आचार्य से भिन्न श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा जो बुद्धि आपने प्राप्त की है वह तर्क से कभी हासिल नहीं हो सकती। आप उत्तम धैर्य वाले हैं, मैं तो चाहता हूं आपके जैसा शिष्य जो ऐसा प्रश्न पूछता है हमें हमेशा मिलता रहे। न ऐसा तर्केण मति ही आपने या तर्क ऐसा है कि जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। एक बहुत बड़े वकील थे, लॉयर, उसका बहुत बड़ा नाम था। कानून शास्त्र उसके दिमाग में, सब पुस्तकें उसके दिमाग के अंदर था। जो भी कोर्ट में सामने वाला अगर उसे पता चले कि ये फलां वकील हमारे सामने है, वह अपने अपने असील को ऐसा कहता था कि देखो भाई, हो सके तो कोर्ट के बाहर ही ये मसला निपटा लो, क्योंकि इसके सामने हम जीत नहीं पाएंगे। क्यों? बहुत होशियार है। ऐसे ऐसे तर्क हमारे सामने रखेगा कि हमारे पास कोई उत्तर ही नहीं होगा और वह ही जीतेगा, ऐसी उसकी प्रतिष्ठा थी। एक बार ऐसा हुआ कि रात को पार्टी में देरी हो गई और सुबह सोमवार के दिन कोर्ट में उसे पेश होना था, तो वो जो फाइल उसको सुबह उनका अभ्यास था, जो मुकदमा है वह लड़ने के लिए फाइल देखता था पहले, ताकि उसके मालूम हो कि हम मुझे क्या बात करनी है जज के सामने। रात को देरी से आया, लेट उठा और सीधा चाय नाश्ता करके वह तो गाड़ी में बैठकर कोर्ट में चला गया। उस बीच उसने थोड़ा बहुत उसे देखने का टाइम मिला। कोर्ट जैसे शुरू हुई और उसने तर्क करना शुरू कर दिया। ऐसा तर्क उसने किया कि जो सामने वाले की अनुकूल हो, उसकी फेवर में हो। अब सामने वाला वकील जो है वो प्रसन्न हो गया, वाह ये तो हमारी बात कर रहा है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये हमारी बात कर रहा है, चलो हम जीत जाएंगे। जिसके ऊपर यह केस था वह व्यक्ति भी खुश हुआ, अरे वाह हमारी फेवर कर रहा है। अब जो वकील जो जज के सामने तर्क पेश कर रहा था, तो पीछे से उसका जूनियर आया कि सर आप जो कह रहे हो वह उसके फेवर में है, हमें उसकी अगेंस्ट में बोलना है, उसके विरुद्ध बोलना है। हाँ ठीक है, उसने कहा योर ऑनर, अभी अभी जो मैंने आधे घंटे तक बात की वह यह वकील सामने वाला है, वह मेरे बात करने के बाद बोलने वाला था, अब मैं उसको काटने के लिए मेरा पक्ष आपके सामने रख रहा हूं। अब देखिए तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। जितना भी आप तर्क आत्मा के लिए करते जाएंगे उसका कोई समाधान नहीं होने वाला। उपनिषद में ऐसी एक कथा भी आती है कि ये पूरा जो जगत है, ब्रह्मांड है, वह किस में स्थित है? आकाश में स्थित है। तो फिर आकाश किस में स्थित है? वह ब्रह्म के अंदर, आत्मा के अंदर स्थित है। फिर प्रश्न पूछा शाकल्य मुनि ने, ये ब्रह्म किस में स्थित है? याज्ञवल्क्य ने कहा बहुत हो गया, खत्म कर अभी, वरना तेरा सिर कट के नीचे गिर जाएगा। यह आत्मतत्व तर्क से कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए कहा न एषा तर्केण मति ही आपनेया। फिर कहते हैं प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा ही यह आत्मतत्व कहने योग्य है। क्यों? क्योंकि उसके लिए शास्त्र और श्रुति ही एकमात्र प्रमाण है। शास्त्र में प्रमाणत्व बुद्धि आ जाएगी, शास्त्र जो कह रहा है वह सत्य है, ऐसी बुद्धि जब होगी ना तब शास्त्र जो कहेगा वह सच है, ऐसा हमारे दिमाग के अंदर विचार आएगा। लेकिन फिर भी हम शंका करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, तो उसकी कोई गति नहीं है। इसलिए यमराज नचिकेता को कहते हैं प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्टः याम त्वमाप सत्यधुतिर्बतासि। हे नचिकेता, आपके पास सत्य धृति है, एक है सात्विक धृति, दूसरी तामसिक, तीसरी राजसिक धृति है। नचिकेता के पास जो धृति है, धृति का अर्थ है शरीर स्वस्थ न होते हुए भी मुझे ये करना ही है। यह जो आपने ठान लिया ना, जैसे कोई महात्मा है 105 डिग्री उनको बुखार है, यहां आए मान लीजिए प्रेमपुरी में 105 डिग्री उनको बुखार है, लेकिन अंदर दिमाग में ऐसा निश्चय है चाहे कुछ भी हो जाए लोग तो सुनने के लिए आए ही होंगे, मैं कुछ भी करके व्यासपीठ ऊपर तो बैठ ही जाऊंगा। ये जो निश्चय है उसे कहते हैं धृति। यमराज ने प्रलोभन बहुत सारे दिए, लेकिन फिर भी नचिकेता ने यही कहा कि मुझे तो वह तत्व ज्ञान के बारे में ही जानना है, जीवात्मा रहता है या नहीं रहता है, कृपा करके यह ही मुझे कही। यह है उसकी धृति, सत्य धृति। और यमराज कह रहे हैं कि आपके जैसा शिष्य ऐसा प्रश्न पूछने वाला मुझे मिलता ही रहे। प्रश्न भी कैसा पूछना चाहिए यह भी पता होना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में महात्माओं को मिलते हैं और जो नहीं पूछना चाहिए वह पूछ लेते हैं। महाराज जी, ऐसा क्या हुआ कि आपने संन्यास ले लिया? यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए उसको। ऐसे है बहुत सारे, और कितने साल से आप सन्यासी हैं? खाने पीने का क्या करते हैं आप लोग? जैसे हम लोग सिर्फ फल और दूध ही खाते होंगे। जो प्रश्न पूछने नहीं चाहिए वह आम तौर पे लोग पूछ लेते हैं, क्योंकि यह परंपरा है, मृत प्राय हो चुकी है। हमारे सबके घर के अंदर एक एक सन्यासी होता, क्यों? एक परंपरा थी पहले। राजा जो था उसके कान के बगल में सफेद बाल एक दो दिखने लगे, अब उसे लगा कि अब मुझे चाबियां और राज्य कारभार राजकुंवर को सौंप कर जंगल में चले जाना चाहिए। और आजकल सफेद बाल होते हैं कान के बगल में तो क्या होता है आपको मालूम है, कोई जाने की इच्छा नहीं करता, क्यों? वह परंपरा समाप्त हो गई। यह परंपरा हमारे देश में जो थी, अगर वह उसका निर्वाहन अगर हम लोग करते तो महात्मा को क्या प्रश्न पूछना चाहिए वह हमें पता होगा। कई लोग मुझे ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं कि महाराज आप हाथ देखते हो क्या? मैंने कहा देखो मैं हाथ भी देखता नहीं हूं और कुंडली भी देखता नहीं हूं, क्योंकि उन लोगों को लालसा रहती है अगर महाराज कुछ हमारे जीवन के बारे में बता दे तो अच्छी बात है। कौन से प्रश्न पूछने चाहिए यह समाज को पता ही नहीं। वैसे समाज का कोई दोष नहीं है, क्या पूछना चाहिए यह भी नहीं मालूम है। लेकिन नचिकेता तो वैराग्यवान है, उसने प्रश्न पूछ लिया, गुरुजी प्रसन्न हो गए। राजा जनक भी ऐसा प्रश्न अष्टावक्र गीता में पूछते हैं, कथम ज्ञानम अवाप्तसि, कथम मुक्तिर भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम। तीन प्रश्न पूछे, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, वैराग्य कैसे हो? अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो महात्मा प्रसन्न हो गए। और जनक ने ऐसा प्रश्न पूछा, अष्टावक्र ने पूरी अष्टावक्र गीता सुनाई। यमराज ने यह सुनकर कि नचिकेता सिर्फ आत्मतत्व जानने वाला जिज्ञासु है, प्रसन्न हुए और कह रहे हैं कि आप जैसा शिष्य मुझे मिलता ही रहे। इतना कहने के बाद में यमराज कर्मफल की अनित्यता, उपासना की अनित्यता मंत्र नंबर 10 में कह रहे हैं, जानाम्यहम् सेवदरित्य नित्यम् नह्य ध्रुवे प्राप्यते हि ध्रुवम् तत् ततो मया नाचिकेतश्चितोग्निः अनित्ये द्रव्ये प्राप्तवानस्मि नित्यम्। यमराज कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि कर्म फल का जो खजाना है वह नित्य नहीं है, अनित्य है, क्योंकि अनित्य साधन के द्वारा कभी भी नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हे नचिकेता, मेरे द्वारा, यमराज कह रहा है मेरे द्वारा यह नाचिकेत अग्नि का चयन किया गया, उस अनित्य पदार्थों से ही मैं आपेक्षिक नित्य ऐसा यमराज का जो पद है मैंने प्राप्त किया है। मंत्र के अंदर सेवधि शब्द है, जानामि अहम् सेवधि ही अनित्यम्। सेवधि का अर्थ है खजाना। कोई भी खजाना हो वह कैसा रहेगा? अनित्य रहेगा। सबसे ज्यादा खजाना किसके पास है? कुबेर भंडारी के पास। हमारे पास जो संपत्ति है ना, वह तो कुछ नहीं, लेकिन कुबेर भंडारी के पास बहुत सारा खजाना है। इसलिए कई जगह मंदिर भी ऐसे होते हैं, कुबेर भंडारी का मंदिर, और वहां लोग ज्यादा जाएंगे। क्यों? धन की प्राप्ति होगी। कितना भी धन हो वह एक ना एक दिन समाप्त तो होने वाला है, अनित्य है। एक बाह्य धन है जो कि ये सोना चांदी वगैरह, वह अनित्य है। एक दूसरा आंतर धन है। आंतर धन माने जो कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा जो प्राप्त होता है, यज्ञ याग के द्वारा जो आपको फल प्राप्त होता है, वह भी कैसा है? अनित्य है। आपने नवचंडी करवाया, लक्षचंडी करवाया, या फिर लघु रुद्र महारुद्र करवाया, ठीक है, लेकिन याद रखिए वह कर्म का फल भी अनित्य है। क्यों? कर्म स्वयं अनित्य है तो स्वाभाविक फल भी अनित्य ही होगा। इसलिए यमराज कह रहे हैं जानामि अहम् सेवधि ही अनित्यम्, ततो मया नहीं अध्रुवे ही प्राप्यते ध्रुवम तत। अध्रुव से या अनित्य से नित्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। हम सभी लोग नित्य चाहते हैं, नौकरी भी नित्य होनी चाहिए, यह शरीर भी नित्य होना चाहिए। ऐसा हम चाहते हैं कि यह घर हमारा बना रहे, मेरे लड़के लड़के के लड़के वह भी सब बना रहे। चाहते तो है लेकिन होता नहीं है। क्यों? वह सब अनित्य है। अनित्य से कभी भी नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर हो जाए तो क्या होगा? वो जो भी प्राप्त हुआ वह अनित्य ही होगा। हम सुख चाहते हैं, विषय आनंद हम प्राप्त करते हैं, वह अनित्य है। उत्पन्न हुआ, इंद्रियों की वृत्ति और मन के साथ संपर्क हुआ, उत्पन्न हुआ तो वो स्वाभाविक है नाशी ही होगा। जितने भी विषय सुख है, जितने भी आनंद है, जितने भी कर्म के फल द्वारा जो आपने प्राप्त किया वह सब अनित्य है। दूसरा एक है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद जो है वह अनित्य नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्रह्मानंद भी शायद अनित्य होगा क्योंकि वह उत्पन्न वाला शायद होगा, लेकिन वह उत्पन्न होने वाला नहीं है। हाँ, अभी हमें पता नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं, अभी मुझे पता नहीं है कि मैं आनंद स्वरूप हूं। श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा वह जो आवरण निवृत्ति हो जाती है तो वह ब्रह्मानंद अपने आप प्रकट होता है, जो कि वह अपना आपा ही है। अज्ञान के वशात हम मानते हैं कि अभी मैं आनंद ब्रह्मानंद महसूस नहीं कर रहा हूं, अनुभव नहीं कर रहा हूं। ब्रह्मानंद बाद में उत्पन्न होगा, बाद में उत्पन्न होगा ऐसा नहीं। अगर बाद में उत्पन्न होगा तो भी वह अनित्य ही होगा क्योंकि उत्पन्न हुआ है। वैसे देखा जाए तो विषय का सुख है, विषय का जो आनंद है, वह भी ब्रह्मानंद का ही अंश है। हम जो जो भी आनंद अनुभव कर रहे हैं विषय भोग से, याद रखिए वह ही ब्रह्म का ही अंश है। अगर अंश इतना सुखदायक है तो वह कितना सुखदायक होगा। अगर सैंपल में भी आनंद है तो गुड़ाउन में तो बात ही मत पूछिए स्वामी जी, वह अनित्य है। कौन? विषय आनंद। ब्रह्मानंद नित्य है। इसलिए यमराज ने यहां कहा, अनित्य ही न ही अध्रुव ही प्राप्यते ध्रुवं तत्। त्यार उसके बाद में कहते हैं, अनित्य ही द्रव्य ही प्राप्तवान अस्मि नित्यम। यमराज अपनी कथा कहने की शुरुआत करते हैं, उसे यमराज पद कैसे प्राप्त हुआ? यमराज ने नाचिकेत अग्नि के अंदर विराट की भावना की, हिरण्यगर्भ की भावना की, और हिरण्यगर्भ की भावना की साथ में उसके गुरु ने उसे तत्व का भी उपदेश दिया होगा। लेकिन तत्व का उपदेश देने के बाद भी अगर उसके दिमाग के अंदर कोई वासना रह गई, प्रतिबंध हो गया, तो वह तत्वज्ञान नहीं होगा। प्रतिबंध हटते ही तत्वज्ञान हो गया, लेकिन उस बीच में वह जो हिरण्यगर्भ की उसने जो भावना की, उसके फल स्वरूप उसे यमराज पद की प्राप्ति हो गई। तत्वज्ञान तो है अब, लेकिन वह जो फल मिला उसको यमराज पद की प्राप्ति, जब तक वह फल समाप्त नहीं होता यमराज वो यम शरीर से नहीं निकल सकते। जैसे कोई तत्वज्ञानी है, उसे तत्वज्ञान हो गया, लेकिन जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध जब तक भुगतेंगे नहीं तब तक वह शांत नहीं होता। बस वैसी स्थिति यमराज की है। तत्वज्ञान तो उनको हो गया, लेकिन वो जो उपासना की थी हिरण्यगर्भ की, और साथ में थोड़ा जो प्रतिबंध था, वो प्रतिबंध तो निवृत्त हो गया, ज्ञान हो गया, लेकिन वो उपासना के फल स्वरूप जो उसे यमराज पद की प्राप्ति होनी थी वह प्राप्त हो गई। ज्ञान तो है ही, साथ में उनको यमराज पद की प्राप्ति हो गई। इसलिए कह रहे हैं यहां यमराज, अनित्य ही द्रव्य ही प्राप्तवान अस्मि नित्यम। ये अनित्य पदार्थों से, अनित्य द्रव्यों से, या तो अग्नि के अंदर विराट भावना की उपासना से मुझे यह यम पद की प्राप्ति हुई है। यम पद भी एक ना एक दिन समाप्त होने वाला है। जब तक प्रारब्ध का भोग खत्म नहीं होता तब तक समाप्त नहीं होता। तो यमराज के शरीर में आने के बाद भी वह तत्वज्ञानी तत्व का उपदेश करेगा, और जो उसकी ड्यूटी है यमराज की, वह ड्यूटी भी निभाएगा। इसलिए यमराज अपनी ड्यूटी ठीक से निभा रहे हैं। स्पेशल लोगों को लेने के लिए वो स्वयं जाते हैं, और कोई आम आम आदमी हो तो उसको लेने के लिए अपने अनुचर को भेज देते, जाओ उनको लेके आओ। ड्यूटी वह अपनी ठीक से निभा रहा है। इसलिए यमराज ने अपनी कथनी यहां पे कह दी कि अनित्य ही द्रव्य ही प्राप्तवान अस्मि नित्यम। इतना कहने के बाद अब आगे यमराज नचिकेता के त्याग की प्रशंसा करने वाले हैं, क्योंकि इतना इतना भोग ऑफर करने के बाद में भी नचिकेता ने स्वीकार नहीं किया, उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, लेकिन समय मुझे इजाजत नहीं देता, कल हम फिर देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।